कहानी का नाम है तुम्हारा आदमी और इसके लेखक हैं एडगार केरेट। जब अचानक एबिगेल ने मुझसे कहा कि वह ब्रेकअप चाहती है, मैं हैरान रह गया। घर के सामने टैक्सी के रुकते ही वह तेजी से उतरी और बोली कि ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। अब वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती है और ना ही भविष्य में कोई रिश्ता रखना। यहाँ तक कि नए साल और बर्थडे में भी कोई कार्ड या बधाई संदेश नहीं। यह कहकर उसने कार का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि ड्राइवर भी चौंक पड़ा। मैं कार की पिछली सीट पर भौचक बैठा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पूरी शाम बहुत अच्छी बीती थी। हमने एक फिल्म देखी थी जो बोर थी, मगर उसके बाद हमने एंजॉय किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने का रिश्ता कुछ ही पलों में खत्म? उसकी यह भाषणबाजी और दरवाजे को यूं भड़ाक से बंद करना मुझे परेशान कर रहा था। मैं सदमे में था। तो अब क्या? शीशे में से मुझे घूरता हुआ ड्राइवर बोला, तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूं? अगर तुम्हारा कोई घर हो तो, मतलब तुम्हारे माँ बाप के घर, किसी दोस्त के, किसी सस्ते से मसाज पार्लर में चलोगे? अब तुम ही मालिक हो, राजा हो। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं अपने साथ क्या करने वाला था। मैं बस इतना जानता था कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ था। रोनित और मेरे ब्रेकअप के बाद मैंने कसम खाई थी कि अब किसी को इतने करीब नहीं आने दूंगा जो मुझे इस तरह चोट पहुंचाए। लेकिन फिर एबिगेल मेरी जिंदगी में आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक यह, इसका हकदार मैं बिल्कुल नहीं था। सही कह रहे हो, ड्राइवर बड़बड़ाया। उसने चाबी घुमाकर इंजन बंद किया और अपनी सीट पीछे झुकाकर अध लेटा हो गया। गाड़ी क्यों चलाई जाए जब यहीं इतना आराम है? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर तो कैसे भी दौड़ ही रहा है। तभी कार में बज रहे रेडियो पर एक आवाज गूंजी, 9 मसादा स्ट्रीट, कौन है? और वह पता मैंने पहले कहीं सुन रखा था। मेरी याददाश्त में वह ऐसे चिपक गया था जैसे किसी ने कील मार कर ठोक दिया हो। जब रोनित ने रिश्ता तोड़ा था तब भी परिस्थितियां ऐसी ही थीं। इसी तरह हम टैक्सी में बैठे थे। वह टैक्सी उसे एयरपोर्ट ले जा रही थी। उसने कहा था कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, और यकीनन मेरी उससे दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। उस वक्त भी मुझे ऐसे ही छोड़ा गया था, टैक्सी की पिछली सीट पर अकेले। उस वक्त भी ड्राइवर बड़बड़ कर रहा था, मगर मैंने उसका एक शब्द नहीं सुना। लेकिन रेडियो पर सुनाई पड़ने वाला वह खिजाव पता मुझे बहुत अच्छे से याद है, 9 मसादा स्ट्रीट, किसका कॉल? और अब फिर शायद यह सिर्फ एक संयोग था, मगर मैंने टैक्सी वाले को बोला कि वह मुझे वहां ले चले। मुझे उस ठिकाने के बारे में पता लगाना ही था। जब हम उस जगह पर पहुंचे तो एक टैक्सी वहां से रवाना हो रही थी। टैक्सी की पिछली सीट पर एक छोटे सिर की छाया थी, जैसे कोई बच्चा हो। मैंने ड्राइवर को पैसे पकड़ाए और टैक्सी से निकल गया। वह एक निजी मकान था। मैंने बाहर का गेट खोला और घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई, जो कि बेवकूफ़ी की बात थी, क्योंकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या करता या क्या जवाब देता अगर किसी ने सही में दरवाज़ा खोल दिया होता। रात के उस समय मेरे वहाँ मौजूद होने का कोई वाजिब कारण भी नहीं था, लेकिन मैं इतना झुंझलाया हुआ था कि मैंने तनिक भी परवाह न की। दोबारा घंटी दबाई, और इस बार अधिक देर तक, और फिर धड़ाम से दरवाजे पर लात मारी, जैसे हम फौज में करते थे डोर टू डोर सर्च के दौरान। कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। मेरे दिमाग में एबिगेल और रोनित के ख्याल अन्य सभी टूटे रिश्तों के साथ सिमटने लगे और उन सभी का एक ढेर सा बन गया। ये घर जहाँ किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला मेरी खीज को और बढ़ा रहा था। मैं घर के इर्द गिर्द मंडराने लगा किसी खिड़की की तलाश में जिससे कि अंदर झांक सकूं। उस घर में खिड़कियां ही नहीं थी, था तो बस एक पिछला दरवाजा, ज्यादातर कांच का बना हुआ। मैंने अंदर देखने की कोशिश की, वहां घुप अंधेरा था। मैं कोशिश करता रहा लेकिन मेरी आंखें उस अंधेरे को भेद ही नहीं पा रही थीं। मैं जितनी ज्यादा कोशिश करता सब कुछ उतना ही धुंधला होता जाता। सच, मेरा दिमाग फिर गया था। अचानक ऐसा लगा कि मैं अपने आप को कुछ दूरी से देख रहा हूं। झुकते हुए, पत्थर उठाते हुए, उसको अपनी स्वेटर में बांधते और उससे कांच फोड़ते हुए, सावधानी बरतते हुए कि कहीं कांच न लगे, मैंने अंदर हाथ डाला और दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही इधर उधर टटोल कर स्विच ढूंढा। जब लाइट जली तो वह पीली और एकदम धीमी थी। उस बड़े से कमरे के लिए सिर्फ एक बल्ब था। वह एक विशाल काय कमरा था, कोई फर्नीचर नहीं, एकदम खाली, सिवाय एक दीवार के जिस पर कुछ औरतों की तस्वीरें टंगी थीं। बहुतों पर फ्रेम चढ़े हुए थे एवं कई केवल मास्किंग टेप के सहारे दीवार पर चिपकाई गई थीं। मैं उन सब चेहरों को जानता था। डालिया, मेरी फौज के समय की प्रेमिका, दानियेल, जिसके साथ स्कूल के समय मेरा चक्कर था, स्टेफनी, एक पर्यटक जो यहाँ रुक गई थी, और रौनित, वे सब वहाँ थीं। और फिर बाएं हाथ के कोने की तरफ एबिगेल की एक फोटो, नाजुक सोने के फ्रेम में मुस्कुराते हुए। मैंने लाइट बंद कर दी और वहीं एक कोने में ढह गया। मैं सिर से पैर तक कांप रहा था। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था जो यहां रह रहा था, और ना ही मैं जानता था कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, या वह हमेशा कैसे चीजें तबाह कर देता था। मगर एकाएक सभी चीजों के तार जुड़ने लगे। रिश्तों में दरार पड़ना, सारी प्रेमिकाओं का मुंह मोड़ लेना, डेनियल, एबिगेल, रौनित, अरे ये कहानी हमारी कभी थी ही नहीं, ये कहानी तो उस आदमी की थी। मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजरा होगा उसके घर लौटने तक। मैंने पहले टैक्सी के जाने की आवाज़ सुनी, फिर सामने के दरवाजे में चाबी फंसाने की आवाज़, फिर लाइट जल गई और वह नज़र में आया, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ। कुत्ते का पिल्ला बस मेरी तरफ देखता रहा और मुस्कुराता रहा। वह कद में छोटा था, किसी बच्चे जैसा, बड़ी आंखें, उन पर कोई पलके नहीं, और हाथ में एक रंगीन प्लास्टिक स्कूल बैग थामे हुए। जब मैं कोने से उठा तो वह अजीब तरह से हंसा, जैसे किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां कैसे पहुंचा, तो वह भी छोड़ गई। मेरे और करीब जाने पर वह बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, और भी आएंगी। मैंने उत्तर देने के बजाय बड़ा सा पत्थर उसके माथे पर दे मारा। वह गिर पड़ा, लेकिन मैं नहीं रुका। नहीं, मुझे कोई दूसरी नहीं चाहिए, मुझे बस एबिगेल चाहिए, और मैं चाहता हूं वह आदमी हंसना बंद करे। उस पूरे समय जब पत्थर से मैं उसके सिर पर वार कर रहा था, वह सिसकी भरते हुए सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, यह तुम क्या कर रहे हो, यह तुम क्या कर रहे हो, यह तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा आदमी हूं, तुम्हारा आदमी। और फिर वह शांत हो गया। जब सब खत्म हुआ तो मैं उल्टी करने लगा। उल्टी से मुझे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे फौज में लंबे सफर के दौरान जब स्ट्रेचर उठाने की बारी किसी और की आती है तो कितना हल्का लगता है, इतना कि जिसकी कभी कल्पना भी ना की हो। सारा गुस्सा, अपराध बोध एवं डर कि मैं पकड़ा जाऊंगा, सब कुछ गायब हो गया। घर के पीछे थोड़ी ही दूरी पर घने पेड़ थे, मैं उसको वहीं फेंक आया। पत्थर और स्वेटर जो खून में सने हुए थे, उन्हें मैंने घर के बाड़े में गाड़ दिया। कुछ हफ्तों तक मैं उसे अखबारों में ढूंढता रहा, समाचारों में और लापता लोगों की सूची में भी, पर वहां कुछ नहीं था। एबिगेल ने मेरे किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। किसी से सुनने में आया कि उन्होंने उसे शहर में किसी लंबे पोनी टेल वाले मर्द के साथ देखा था। मैं टूट गया, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता। वास्तव में हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ समय बाद मेरी मुलाकात मियाँ से हुई। मैं उसके साथ घूमने फिरने लगा। सब कुछ बढ़िया और समझदारी के साथ चल रहा था। मियाँ के साथ शुरू से ही मैं अपने आप को खुले तौर पर व्यक्त कर पा रहा था, जैसे कि मैं अक्सर लड़कियों के साथ नहीं कर पाता हूँ। मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था। रात में कभी कभार मुझे उस बौने के सपने आते कि कैसे मैंने पेड़ों के बीच उसके शरीर को ठिकाने लगाया था और मैं घबराकर उठ बैठता। लेकिन फिर मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता कि डरने का कोई कारण नहीं है, वह अब हमारे बीच नहीं है। और फिर मैं मियाँ को थाम कर वापस सोने चला जाता। मियाँ और मेरा रिश्ता भी टैक्सी में ही खत्म हुआ। मियाँ ने मुझसे कहा कि मेरे अंदर कोई भावनाएं नहीं है और मैं संवेदनहीन हूँ। यह इसलिए कि जब कभी वह मानसिक वेदनाओं से गुजर रही होती तो मैं बेखबर रहता और यह समझता कि वह खुश है क्योंकि मैं खुश हूँ। उसने कहा कि हमारे बीच कुछ समय से दिक्कतें चल रही थी, लेकिन मैंने उस पर कभी गौर तक नहीं किया। और फिर वह रोने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को दूर खींच लिया और कहने लगी कि अगर मैंने उससे प्यार किया है तो मैं उसे शांति से जाने दूंगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसके पीछे जाकर उसे मनाना जारी रखूं या नहीं। उसी समय टैक्सी के रेडियो पर घोषणा हुई, 4 एडलर रोड। मैंने ड्राइवर को वहां ले जाने के लिए कहा। जब हम पहुंचे तो पहले से एक टैक्सी वहां खड़ी हुई थी। उसके अंदर घुसे एक युगल लड़का लड़की, लगभग मेरे हम उम्र, शायद थोड़े जवान। उनके ड्राइवर ने कुछ कहा और वे दोनों हंसने लगे। मैं आगे बढ़ता गया 9 मसादा स्ट्रीट की ओर। मैंने पेड़ों के बीच उसके शव को ढूंढने की कोशिश की, मगर वहां कुछ नहीं था। मुझे मिली तो सिर्फ एक जंग लगी रॉड। मैंने उसे उठाया और घर की तरफ बढ़ने लगा। घर बिल्कुल उसी स्थिति में था, अंधेरा, पिछले दरवाजे का कांच टूटा हुआ। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ अंदर घुसाया, सावधानी से कि कटे नहीं। मुझे लाइट का स्विच झट से मिल गया। अभी भी सब कुछ उतना ही खाली था, सिवाय दीवार पर टंगी तस्वीरों, बौने के भद्दे स्कूल बैग और फर्श पर एक गहरे चिपचिपे धब्बे के। मैंने तस्वीरों का मुआयना किया, वे सब वहीं थीं, बिल्कुल उसी क्रम में। अब मैंने बैग खोला और उसके अंदर झांका। बैग में कुछ पैसे थे, एक इस्तेमाल की हुई बस की टिकट, चश्मे की डिब्बी और मियाँ की एक तस्वीर जिसमें मियाँ के बालों में चोटी बंधी थी और वह अकेली नजर आ रही थी। तभी अचानक मुझे समझ आया कि बौना मरने से पहले क्या कह रहा था आगे और भी लड़कियां आने के विषय में। मैंने उस बौने की तस्वीर तैयार करने की कोशिश की। उस रात को जब मेरा और एबिगेल का रिश्ता खत्म हुआ था, वह कहां कहां गया होगा, किस तरह फोटो के साथ लौटा होगा और भगवान जाने कैसे उसने ये सुनिश्चित किया होगा कि मेरी मियाँ से मुलाकात हो। मगर मैंने इस बार भी सब मिट्टी में मिला दिया और अब ज़रूरी नहीं कि आगे और भी लड़कियां आएंगी, क्योंकि मेरा आदमी मर चुका था। मैंने खुद उसे मारा था।